No problem.
Recording in progress.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضي عنه، ذلك لمن خشي ربه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. ما شاء الله، آج جو ہے وہ آپ کی مسلم ہیروز والی جو کلاس تھی، وہ ایک بڑی ڈفرینٹ ترتیب کے اوپر ہوئی، ڈفرینٹ طریقے سے، کہ غالباً آپ نے دوسرے ساتھیوں سے کہا کہ وہ حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں اپنے اپنے تاثرات اور اپنا جو ان کے ساتھ وقت گزرا اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتائیں. تو اس طرح سے غالباً کسی اور مسلم ہیروز کلاس کے اندر پہلے نہیں ہوا تھا. ظاہر ہے اختتام جو ہے وہ اس لمبے سلسلے کا ماشاءاللہ، جو کہ کافی عرصہ پہلے شروع ہوا اور حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ سے حضرت مولانا نجیب ناصر صاحب نے شروع کیا. تو وہ ہوتے 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 بالآخر جو ہے وہ ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے اوپر اس سلسلے کا اختتام ہوا. غالباً یہ آپ کی آخری کلاس تھی اس سلسلے کی، یا آگے ایک اور بھی؟ اگلے ہفتے آخری کلاس ہوگی. اچھا جی، صحیح ہے. تو بہرحال یہ بات تو عجیب بھائی نے کافی پہلے سے ہی بتائی بھی تھی کہ آخری شخصیت جو ہم رکھیں گے اس سلسلے میں وہ حضرت جی کی ہی ہوگی. لیکن اس وقت ہم نے یہ سوچا نہیں تھا کہ جس وقت ہم حضرت کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے تو اس وقت حضرت ہمارے ساتھ اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہوں گے. زندگی کا کسی کو پتہ نہیں کہ ہم پہلے سے کچھ پلان کرتے ہیں اپنے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں، لیکن ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم خود اس دنیا میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یا وہ اس دنیا میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے. کسی کو کچھ نہیں پتہ اس دنیا کے بارے میں. بہرحال حضرت رحمتہ اللہ علیہ کی باتیں آپ سنتے ہی رہتے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی سنتے ہی رہیں گے. اللہ تعالیٰ ان کے ذکر کو اور ان سے فائدے کو ہمارے درمیان جاری و ساری رکھے، اور ان کے لیے بھی اس کو صدقہ جاریہ بناتا رہے بناتا رہے بناتا رہے، اور ہمارے لیے بھی اس کو صدقہ جاریہ کا سبب بناتا رہے. تو چلیں پھر، ابھی آپ کی کلاس اور انشاءاللہ ہونی ہے، تو ہم پھر یہ والی کلاس کرتے ہیں جو کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ہے. تو صحابہ کرام کا معاملہ بھی ایسا کہ دیکھیں، 1400 سال گزر گئے ان کو اس دنیا سے جائے ہوئے، لیکن آج بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر خیر یعنی اچھا ذکر، کیونکہ ذکر تو اوروں کا بھی ہو رہا ہے، فرعون کا بھی ذکر ہوتا ہے، حامان کا بھی ذکر ہوتا ہے، نمرود کا بھی ہوتا ہے، ابو جہل کا بھی ہوتا ہے، ابو لہب کا بھی ذکر ہوتا ہے، اور قرآن میں ہوتا ہے. ابو لہب کا ذکر کہاں پر ہے؟ قرآن کے اندر ہے. ٹھیک، رائٹ. اس سے اچھی جگہ کون سا کس کا ذکر ہو سکتا ہے؟ لیکن کیا وہ ذکر خیر ہوتا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ ذکر بد ہوتا ہے، وہ ذکر سو ہوتا ہے، برا ذکر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو خالی ذکر ہو جانا یہ کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ ذکر خیر کا ہونا یہ کمال کی بات ہے. ٹھیک ہے، تو صحابہ کرام میں سے ہم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر پڑھ رہے ہیں اس کلاس کے اندر. تو وہ عشر مبشرہ صحابہ میں سے ایک تھے، اور 8ویں نمبر پہ ہم ان کا ذکر پڑھ رہے ہیں. پھر اس کے بعد 9ویں اور 10ویں ان کے بعد پڑھیں گے. تو سعد رضی اللہ عنہ کی آخری بات جو اس نے پڑھی تھی، وہ غالباً یہاں تک ہم پہنچ گئے تھے کہ جب وہ مکہ مکرمہ گئے تھے تو بہت بیمار پڑ گئے تھے. وہ والی حدیث کے بہت بیمار ہو گئے. اچھا، واقعہ یہ وقت کون سا تھا؟ یہ حجۃ الوداع کا وقت، آخری جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حج تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ گئے تھے نا. تو اس وقت سعد رضی اللہ عنہ جو ہے وہ مکہ مکرمہ کے اندر شدید بیمار پڑ گئے، اور اتنے بیمار کہ ان کو جو ہے اپنے زندگی سے ہی مایوسی ہونے لگی کہ میں اب نہیں بچوں گا اس کے اندر. تو حتیٰ کہ वसीयत की बातें शुरू कर दें कि मेरे पास इतना माल है तो मेरी एक ही बेटी है, मेरे मरने के बाद उसको इतना माल दिया जाए, लेकिन बाकी सारा माल अल्लाह के रास्ते में मैं खैरात कर देना चाहता हूँ। तो ये डिस्कशन हमने पढ़ी थी। तो हालत इतनी खराब हो गई ना उनकी बीमारी के अंदर, तो एक वक्त आया कि वो रोना शुरू हो गए। तो उनसे पूछा गया कि भाई आप क्यों रो क्यों रहे हैं। पता कि नबी अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि आप रो क्यों रहे हैं, ये बीमारी ऐसी भी, मोमिन तो नहीं रोता बीमारी के अंदर। तो फरमाते हैं कि मैं इसलिए रो रहा हूं कि कहीं मेरी मौत मक्का मुकरमा में ना आ जाए। अजीब, मक्का मुकरमा में मौत के ऊपर। वो कहते हैं इस वजह से क्योंकि जिस सरजमीन को मैंने हमेशा के लिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर छोड़ दिया, ठीक है, तो अब मैं उस जमीन में मरना भी नहीं चाहता। सही है, ये उनकी ख्वाहिश थी कि मैंने इसको छोड़ दिया अल्लाह की खातिर, अब मैं यहाँ पे मरना भी नहीं चाहता, ठीक है, मक्का मुकरमा। हालांकि तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनके लिए फिर दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा शफी सादन, अल्लाहुम्मा शफी सादन, अल्लाहुम्मा शफी सादन, 3 दफा फरमाया कि अल्लाह साद को शिफा अता फरमा, साद को शिफा अता फरमा, साद को शिफा अता फरमा। और साथ ही नबी अलैहिस्सलाम ने उनको ये बशारत भी सुनाई कि साद तुम्हें उस वक्त तक मौत नहीं आएगी कि जब तक तुम एक कौम के फायदे का सबब ना बन जाओ और एक कौम के नुकसान का सबब ना बन जाओ, उस वक्त तक तुमने नहीं मरना, ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला बता दिया करते थे कभी फ्यूचर के हालात, कभी नहीं बल्कि अक्सर बता दिया करते थे, बहुत कुछ बताया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। पिछले दिनों आपने से किसी से बात हो रही थी तो उनसे मेराज के मौके की, आपके माशाल्लाह बच्चियों का प्ले स्कूल था उसमें भी मेराज का टॉपिक चल रहा था, और बच्चों का प्ले स्कूल था उसमें भी मेराज का टॉपिक चल रहा था। तो मेराज के टॉपिक पर ही बात करते हुए उनसे बात हुई कि अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को फ्यूचर के बहुत सारे हालात बता दिए थे ना, तो वो कैसे बताए थे? क्या कोई पेपर आता था? जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी अलैहिस्सलाम के पास पेपर लेकर के जाते थे कि इस पेपर के ऊपर ये लिखा हुआ है, आप सब समझाए, वो पढ़ लेते थे, या जिब्राइल अलैहिस्सलाम पढ़ के सुना देते थे कि दज्जाल आएगा, दज्जाल ऐसा होगा, उसके सर पे ये लिखा होगा, उसकी आंखें ऐसी होंगी, और ये करेगा, उसको वो करेगा। ये थ्योरी में आता था? नहीं, थ्योरी में नहीं आता था, रिटन फॉर्म में नहीं आता था, ठीक है, या स्पोकन फॉर्म में नहीं आता था, बल्कि किस फॉर्म में आता था कि नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला फ्यूचर के हालात दिखा देते थे, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते थे और देख करके फिर वो सहाबा कराम को बयान करते थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें ना नबी अलैहिस्सलाम को दिखाई जाती थी, कोई पढ़ाई नहीं जाती थी, तो देख करके बयान करते थे, तो उसके फिर सारे अहवाल जो है वो नबी अलैहिस्सलाम फिर जैसे जैसे देखते थे वैसे वैसे बयान करते थे। इसी तरह से जन्नत और जहन्नम के अहवाल भी नबी अलैहिस्सलाम को दिखाए गए, है ना। मिराज में नबी अलैहिस्सलाम को जन्नत दिखाई गई और नबी अलैहिस्सलाम को जहन्नम दिखाई गई। हालांकि टाइम के हिसाब से अगर आप देखें तो अभी तक तो कोई जन्नत में पहुंचा ही नहीं और अभी तक तो कोई जहन्नम के अंदर पहुंचा ही नहीं, ठीक है। वो तो कयामत के दिन के हिसाबो किताब के बाद लोग जन्नत में पहुंचेंगे और उसके बाद लोग जहन्नम में पहुंचेंगे, तो फिर कौन सी जन्नत और जहन्नम दिखा दी गई? क्योंकि ये जो टाइम है ना, ठीक है, कि अब टाइम होगा, फिर होगा, फिर होगा, अब तक टाइम नहीं हुआ, ये हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये कि हम अभी हैं 2026 में हैं, 1447 के अंदर हैं, और अभी तक 1448 हुआ ही नहीं है, 1449 हुआ ही नहीं है, 2027 हुआ ही नहीं है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत का मामला ऐसा नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ टाइम का रेफरेंस नहीं है कोई, अल्लाह ताला के पास इस वक्त की नॉलेज भी ऐसे ही है जैसे कि इससे पहले जो कुछ हुआ था वो सारा का सारा भी अल्लाह ताला के पास ऐसे ही महफूज है, और जो फ्यूचर में होने वाला है वो सारा का सारा भी अल्लाह ताला के पास पहले पहले से मौजूद है, ठीक है। तो अल्लाह के नॉलेज के अंदर सब कुछ बिल्कुल फ्लैट है, जैसे अभी मेरे सामने सब कुछ फ्लैट है ना, आप भी मौजूद हैं, आप भी मौजूद हैं, आप भी मौजूद हैं, आप भी मौजूद हैं, ये नहीं कि आप बाद में आएंगे, आप पहले गुजर चुके हैं, अब आप पहले आए, अब आएंगे, आप बाद में आएंगे, ऐसा नहीं है। मैं सबको इसी बार देख रहा हूं ना, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह हम कमरे में मौजूद हर चीज को एक साथ देख रहे हैं, उसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत टाइम में मौजूद हर चीज को एक साथ देख रहे हैं, ठीक है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, सब कुछ अल्लाह के सामने ऐसे ही है जैसे कि हमारे सामने कमरा है, हमारे सामने कमरे में बैठे हुए लोग हैं, ठीक है। तो उसी नॉलेज में से कुछ जो है वो अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम को फ्यूचर का दिखा देते थे, कभी जो है वो पास्ट का दिखा देते थे, और कभी जो है वो प्रेजेंट की चीजें जो कि सामने मौजूद नहीं होती थी, कहीं दूर मौजूद होती थी, वो अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम को दिखा देते थे, ठीक है। कैसे? मेराज ही के मौके के ऊपर जब नबी अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ लाए मक्का मुकरमा में, तो बताया लोगों को मैं मेराज पे गया था, मैं बैतुल मुकद्दस पे गया था और मैंने ये सब कुछ देखा। तो वो लोग तो थे एराज करने वाले, एतराज करने वाले और मजाक उड़ाने वाले लोग, ठीक है। वो मजाक उड़ाना शुरू हो गए, ये देखो कहाँ से छोड़कर लेकर के आए हैं कि ये उधर से होकर आ, उधर से आ। तो अच्छा तुम उधर गए थे तो हमें ये बताओ कि बैतुल मुकद्दस का दरवाजा कैसा था, हमें ये बताओ कि बैतुल मुकद्दस में खिड़कियां कितनी हैं, हमें ये बताओ कि वहां पर ये कैसा है, वहां पर वो कैसा है, ठीक है। अब नबी अलैहिस्सलाम को क्या याद भाई, ठीक है, कि वहां पे कितनी खिड़कियां थी, कैसा दरवाजा था, कैसा फानूस था, क्या था वो था। तो अल्लाह ताला ने बैतुल मुकद्दस की पूरी वीडियो जो है वो नबी अलैहिस्सलाम के सामने, ठीक है, अब वो नबी अलैहिस्सलाम उस वीडियो को देखे चले जा रहे हैं, थ्री डायमेंशनल वीडियो है, और आजकल होलोग्राम भी उसको कहते हैं, उसको देखे चले जा रहे हैं और जवाब दिए चले जा रहे हैं, हालांकि वो सामने मौजूद तो नहीं था, वो तो कहीं और मौजूद था, ठीक है। इसी तरीके से जिस तरह फिजिकली मौजूद चीज नजर नहीं आ रही होती थी दूसरों को, आप सोसम को दिखा देते दे थे, उसी तरह से टाइम के अंदर मौजूद चीजें पास्ट या फ्यूचर की वो भी आप सोसम को दिखा दी जाती थी जब कोई अल्लाह ताला उससे आप सोसम से काम लेना चाहते थे, ठीक है। इन्होंने लिखा कि माशाल्लाह ये आज इस मजलिस में ऑनलाइन शामिल रहा और हजूर रहमतुल्लाह साथियों की बातें और तासुरात सुनकर बहुत फायदा हुआ और अपनी कमी का एहसास हुआ। अल्लाह ताला हमें भी आप जैसा सिलसिला हजूर रहमतुल्लाह हमारे हजरत के कदरदान बनने की सही तौर पर इस्तफादा हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। उन्होंने माशाल्लाह कदर से आमीन सुनाया। तो बहरहाल नबी अलैहिस्सलाम ने फिर इसी तरह से फ्यूचर का जो ये वाकया था ना हजरत साद बिन अबी वकास से रिलेटेड, कि साद तुम्हें उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक किसी कौम को तुमसे फायदा ना हो जाए और तुमसे नुकसान ना हो जाए। तो फिर हुआ भी यही कि लेटर ऑन इन लाइफ हजरत साद तारन को अल्लाह ताला ने फिर किस कौम से, किस कौम को नुकसान हुआ साद तारन से और किस कौम को फायदा हुआ साद रजील तारन से, ठीक है। कोई गेस करना चाहेगा या किसी को पता है? जी रेहान, काफिरों
काफिर की कौन से लिखते
की कौम को नुकसान हुआ और मुसलमानों की कौम को फायदा हुआ, ठीक है। हाँ बिल्कुल हुआ तो ऐसे ही, लेकिन काफिरों की कौन सी वाली कौम को नुकसान हुआ वो
हैं
नहीं, बल्कि सादतान कहाँ के, फारिस,
यहूदी
फातह कहाँ के बने, ये जो मशहूर है ना ये फातह फारिस के नाम से मशहूर है, ठीक है। फारस यानी पर्शिया, ईरान वगैरह का जो इलाका है ना, इराक और फिर उसके पीछे ईरान का इलाका, तो इनके हाथों पे अल्लाह ताला ने फारस की फतह नसीब फरमाई। और जाहिर है फारस को जो तो इन्होंने यानी कॉन्कर किया, तो वहां के जो खजाने थे हर तरह के खजाने फिर किनके पास आए, अरबों के पास आए, ठीक है। तो अरब कौम को जो है वो फायदा हुआ और ये फारस की अजमी कौम को सादतान से अल्लाह ताला ने नुकसान पहुंचाया, ठीक है। तो सादतान का सबसे नुमाया कारनामा ईरान की फतह है जो उनकी सरबराही में अंजाम पाई, क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सैयदना सिद्दीक अकबर सादतान का जमाना जो था वो शुरू में उसमें क्या होता रहा कि
तो लोग इस्लाम के खिलाफ हो गए, तो जो पहले मुसलमान थे उनके उनके खिलाफ जिहाद हो गए।
सही, ठीक है। तो मुसा भाई ने सही जवाब दिया कि नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में बहुत बड़ी तादाद में लोग मुसलमान हो गए थे, ठीक है। लेकिन जब अबू बकर सिद्दीक का जमाना आया, नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से चले गए ना, तो उनमें एक बहुत बड़ी तादाद थी जो कि मुर्तद हो गए, ठीक है, दे टर्न बैक, सही है। तो ये फितना इर्तेदाद बहुत बड़ी था, बहुत यानी बड़ा फितना था कि अरब के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर लोग इस्लामी सल्तनत के खिलाफ हो गए, किसी ने कहा कि हम जकात नहीं देंगे, ठीक है, और हम बस अपने हिसाब से काम करेंगे, किसी ने कहा कि हम जो है वो ठीक है हमने माना कि कि वो अल्लाह के नबी थे, लेकिन हमारे दरमियान भी कोई अल्लाह का नबी है, तो एक नया अल्लाह का नबी बना लिया उन्होंने, अस्वद अंसी, ये भी बड़ा मशहूर झूठा नबी बना, और मुसैलमा कज़ाब, ये भी बड़ा मशहूर तो नहीं, यही बना झूठा नबी, ठीक है। तो इस तरह के जो फितने हुए तो अबू बकर सिद्दीक के दौर हुकूमत के अंदर, फिर इन फितनों की सरकूबी यानी इनके सर को कुचलने का ही काम आखिर तक चलता रहा, हत्ता के ये सारे फितने खत्म हो गए, ठीक है, हर जगह पे फतह नसीब हो गई मुसलमानों को। फिर अबू बकर सिद्दीक उन्होंने फिर इराक के बॉर्डर के ऊपर फौजें रवाना शुरू करी, और वहां से इराक की कुछ फतुहात हो गई, ठीक है। लेकिन फिर अबू बकर सिद्दीक का भी इंतकाल हो गया। फिर उमर रतान के जमाने में फिर उमर रतान ने फिर से फौजें रवाना करने का इरादा किया कि अब इराक की तरफ और शाम की तरफ, शाम की तरफ तो बाद में हुई, पहले इराक की तरफ मजीद फौजें रवाना की गई। तो अब वो जो फौजें रवाना करनी थी ना, तो उनके ऊपर फिर आया कि भाई इन फौजों की सरबराही कौन करेगा, कौन उनका कमांडर इन चीफ बनेगा, सही है। तो उमर रतान उन्होंने सहाबा से कहा कि भाई कौन, तो सहाबा, इतना बड़ा ये चैलेंज था और इसका जाने के लिए तो सब तैयार थे कि हाँ जिहाद पे हमें जाना है, लेकिन कोई जो है ना वो उसकी उसका कमांडर बनने के लिए सामने नहीं आ रहा था। हत्ता कि हजरत अली रज़ा तआला को कहा गया, अली रज़ा तआला ने इनकार कर दिया, नहीं मैं सिपाही के तौर पे तो लड़ूंगा, मैं कमांडर नहीं बनना, ठीक है। तो अली रज़ा तआला ने एक्सक्यूज कर लिया, तो उसके ऊपर फिर मशवरा किया कि भाई वो जो मजलिस शूरा होती थी ना, ठीक है, उमर रतान के पास बड़े बड़े अकाबिर साहबा जो थे वो मशवरे के लिए बैठा करते थे, उनमें ये लोग भी होते थे, तलहा रतान, जुबैर रतान, अब्दुलरहमान बिन औफ रतान, ठीक है, साद बिन अबी वकास रतान, तो खैर थोड़े से जूनियर थे, लेकिन तो उनसे मशवरा किया करते थे। हमारे मशाइख ने खसूस हजरत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह का एक एक मलफूज पढ़ा, बड़ा जबरदस्त, ठीक है, कि इंसान के अंदर तकब्बुर की जो बीमारी होती है ना, एरोगेंस, प्राइड, तो उसका क्या इलाज कर सकता है इंसान, ठीक है, तकब्बुर का कैसे इलाज हो कि उसका तकब्बुर कंट्रोल में आ जाए और खत्म हो जाए उसके अंदर तकब्बुर। तो फरमाया कि हमेशा अपने बड़ों से पूछ करके काम करो, ठीक है, हमेशा अपने बड़ों से मशवरा करो, बड़ों से पूछो, और उन की जो बात है उसके ऊपर अमल करो, इससे तुम्हारा तकब्बुर जो है ना वो खत्म हो जाएगा, दब जाएगा, ठीक है। हत्ता के बड़ों की खिदमत करने के लिए भी हजरत जी जो है ना वो खूब पैर दबवाते थे, याद है, हम जाते थे कमरे के अंदर, कहते आ जाओ पैर दबाओ क्यों, हजरत जी को बहुत दर्द हो रहा होता था क्या पैर के अंदर, है, या पैर दबाने वाले दूसरे लोग मौजूद नहीं होते थे, आने वालों को क्यों पैर दबाने को कहते थे। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही थी कि पैर दबाने से जो है ना वो तकब्बुर इंसान का खत्म होता है, ठीक है, वो सिर्फ इसलिए कि हमारा तकब्बुर खत्म हो जाए ताकि हम जहन्नम से बच जाएं, क्योंकि जिसके अंदर तकब्बुर होगा वो जहन्नम, वो जन्नत में नहीं जा सकता, ठीक है, पक्की बात है, तकब्बुर के साथ जन्नत में नो एंट्री, एब्सोल्युटली नो एंट्री। तो हमारा तकब्बुर खत्म करने के लिए अगर अपने पैर दबा रहे थे, बल्कि अक्सर तो मुझे तो ये लगता था कि हम दबा नहीं रहे, हम आज जी को और तकलीफ पहुंचा रहे हैं असल में, ठीक है, क्योंकि हर बंदा अपने स्टाइल से दबाता था, हत्ता कि बता रहे थे कि एक दफा इन्होंने ही दबाते दबाते व्यासी जी को मारना शुरू कर दिया ऐसे करके मुक्के मारने जो, यार इनके मुक्के लग भी नहीं नहीं, नहीं रहे होंगे व्यासी जी को, क्योंकि आज से ये 3-4 साल पहले की बात है, लेकिन कुछ और लोग भी होते थे जो कि कुछ और ही करना शुरू हो जाते थे, तो उल्टा उनको तकलीफ हो रही होती, मेरा तो यही ख्याल था। लेकिन हम जहन्नम से बच जाएं ताकि हमारे अंदर तकब्बुर खत्म हो जाए, उसके लिए है ना इस तकलीफ को भी बर्दाश्त कर लिया करते थे, ठीक है। तो अपने बड़ों से पूछ के चलना, अपने बड़ों की खिदमत करना, इससे तकब्बुर खत्म होता है। लेकिन हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि अगर कोई शख्स ऐसा हो जिसका कोई बड़ा ही ना हो दुनिया के अंदर, है, उसके बड़े जितने भी थे वो दुनिया से चले गए, अब वो खुद सबसे बड़ा है, जैसे खुद जो है वो कमांडर इन चीफ है, खुद जो है वो प्रेसिडेंट है, खुद प्राइम मिनिस्टर है, खुद इस किस्म का बड़ा बन गया, खुद सबसे शेख शेखुल मशायख बन गया, अब क्या करे वो, ठीक है, क्या उसको बेफिक्र हो जाना चाहिए कि अब मेरे अंदर तकब्बुर नहीं है, अब जो है वो हो ही नहीं सकता कि मैं तकब्बुर कर सकूं, नहीं, बेफिक्र उसको भी नहीं होना चाहिए। अब वो क्या करे, वो ये करे कि वो अपने मुआमलात में अपने छोटों से मशवरा करे, ठीक है, और छोटों से मशवरा करके फिर उसके मुताबिक फैसला करें, ठीक है, मशवरा करने के बाद फिर कोई फैसला तो किसी एक बंदे ने तो करना है ना, तो फिर राय इकट्ठा करे आराम से और फिर उसके बाद फिर उसके ऊपर मशवरा करे। इससे जो है वो बड़े इंसान के अंदर तकब्बुर पैदा नहीं होता, जो सबसे बड़ा बन चुका अब उसके अंदर तकब्बुर पैदा नहीं होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से जाहिर है कि नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो बड़ा कोई था ही नहीं दुनिया के अंदर इंसान, अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया कि आप वशाविरहुम फिल अमर, मामलात में इनसे मशवरा किया करो। ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम के अंदर तकब्बुर का कोई इहतमाल ही नहीं था, अल्लाह ताला ये अच्छी तरीके से जानते थे। लेकिन जैसे कि बहुत सारे दूसरे मामलात में अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाते थे, असल में वो हमारे लिए हुक्म होता, हमें सिखाने के लिए। ठीक है, तो फिर नबी अलैहिस्सलाम के इस अमल के ऊपर फिर सारे सहाबा भी अमल करते थे कि वो छोटों से मशवरा किया करते थे। तो उमर फारूक खत्ता उन्होंने मशवरा किया कि भाई लोग तो पीछे हट रहे हैं, कोई आगे बढ़ ही नहीं रहा कमांडर बनने के लिए, तो मशवरा दें। तो हजरत अब्दुलरहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने मशवरा दिया कि साद बिन अबी वकास को बनाया जाए गवर्नर, ठीक है, इसका सरबरा बना दिया जाए। तो जितने लोग थे ना सब जो है वो एकदम भड़क उठे, यानी खिल गए, हाँ बिल्कुल साथ साथ साथ, अब तो साथ के ऊपर ना सब पल पड़े जल, यानी उनके पास अब ऑप्शन ही नहीं था ना करने का, सारे बड़ों ने उनको कहना शुरू कर दिया। तो फिर वो तैयार हो गए, तो उनका जो लश्कर था उसके अंदर उन्होंने पहला लश्कर जो बनाया ना साद बिन अबी वक़ास बनाया, तो उन्होंने 99 बदरी सहाबा अपने पहले लश्कर के अंदर रखे, 99 बदरी सहाबा, ठीक है, जिनके अगले पिछले सारे गुना अल्लाह ताला ने माफ कर दिए थे कि अब जो चाहो तुम करो मैं तुमसे राजी हो चुका हूँ। ठीक है, ऐसे साहब, ऐसे नूरानी लोग, ऐसे जो है अल्लाह ताला के रहमत वाले लोग, तो उनको जमा किया गया। और फिर मजीद जो है 99 के ऊपर तकरीबन 211 बनते हैं, जैसे तो 300 लिखा है, 310 साहबा बैत रिजवान वाले थे। ठीक है, यानी 99 बदरी के अलावा 310 साहबा वो थे जो कि बैत रिजवान के अंदर शामिल थे। ठीक है, और फिर उसके बाद 300 सहाबा वो थे जो कि फतेह मक्का में नबी अलैहिस्सलाम के साथ थे। ठीक है, हमारे लिए भी आसानी हो गई कि अशरा मुबशरा खत्म करने के बाद बदरी सहाबा, बदरी सहाबा के बाद बैतर रिजवान के सहाबा, बैतर रिजवान के बाद फतेह मक्का के सहाबा। ठीक है, तो यही कहते इसी ऑर्डर में उन्होंने अपना लश्कर बनाया। तो साद बिन अबी वक़ास अपनी तमाम फौज की सरबराई फरमाते हुए मकाम अशराफ पे पहुंचे और पूरे लश्कर का जायजा लिया, जो तकरीबन 3,000 अफराद पर मुश्तमिल था। तो सहाबा के अलावा भी कुछ हजरात थे उसके अंदर, ताबईन कहलाएंगे, वो भी इस लश्कर का हिस्सा थे। अच्छा, फिर हमेशा की तरह इस लश्कर को जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, मैमना जो राइट साइड से अटैक करेंगे और मैसरा जो कि लेफ्ट साइड से अटैक करेंगे, और हर एक हिस्से के ऊपर अफसर मुकर्रर कर दिया गया। और फिर नक्शा बनाया गया लश्कर का, फैलाओ कैसे जो है वो पीछे से कुमक आएगी, जिसको पीछे से जो मदद आना कहते थे वो कैसे आएगी। अच्छा, फिर वहां से हुक्म आया कि मकाम अशराफ से आगे बढ़कर कादसिया के मकाम पर मोर्चे बनाए। ये जो कादसिया का मकाम है ना, ये बहुत मशहूर जगह है, जंगे कादसिया, ठीक है, बहुत बड़ी जंग हुई थी सहाबा की ये अहले फारिस के साथ, तो ये उसकी इब्तिदा हो रही थी, जंगे कादसिया की इब्तिदा। अच्छा, इस तरह से मोर्चे बनाएंगे कि सामने जो है वो दुश्मन होगा और बैक के ऊपर पहाड़ियां होंगी। ठीक है, और वो पहाड़ियां यानी अरब के साइड की पहाड़ियां, और सामने जो है वो फारिस का मैदान होगा। तो आप फिर कादसिया के मकाम पे इस तरह से मोर्चे बना करके बैठ गए। अरसादा उन्होंने जंगे कादसिया के दिन फिर एक वलवला अंगेज खिताब फरमाया। ठीक है, लड़ाई से पहले मोटिवेशन के लिए, मोरल को बूस्ट करने के लिए एक खिताब किया जाता था, तो उन्होंने भी इसी तरह से खिताब फरमाया, और उसमें अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। ठीक है, सबसे पहले अल्लाह ताला की अजमत, अल्लाह ताला की बड़ाई, कि अल्लाह हर जगह मौजूद है, बादशाहत में इसका कोई शरीक नहीं है, उसकी किसी बात के खिलाफ नहीं हो सकता। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला के कलाम से फिर फरमाया कि अल्लाह ताला कहते हैं, वलकद कतबना फिज़बूरी मिन बाद ज़िक्री अन्नल अर्ज़ यरिथुहा इबादिय सालिहून। ठीक है, कि हमने जबूर में नसीहत के बाद ये लिख दिया था कि जमीन के वारिस मेरे नेक बंदे होंगे। ठीक है, जो मेरे नेक बंदे हैं वो जमीन की अथॉरिटी जो है ना मैं अपने नेक बंदों को दूंगा। सही है, तो तो तुम्हारे रब ने तुम्हें ये देने का वादा किया हुआ है, अगर तुम नेक हो तो तुम्हें जमीन की विरासत मिलने वाली है। 3 साल से अल्लाह ताला ने तुम्हें जमीन को इस्तेमाल करने का मौका दिया हुआ है, तुम खुद भी इसमें से खा रहे हो और दूसरों को भी खिला रहे हो, क्योंकि मुसलमान फौज जो है वहां पे काफी अरसे से थी, ठीक है, तो वहां पे जो है वो वहां की नेमतें खा रहे थे। यहाँ के रहने वालों को तुम कत्ल कर रहे हो, यानी जैसे जैसे तुम आगे बढ़ रहे हो, जाहिर है उन लोगों को तुम कत्ल करते हुए आगे बढ़ रहे हो, उनका माल भी तुम समेट रहे हो, और आज तक उनकी औरतों और बच्चों को कैद कर रहे हो, यानी जैसे जैसे आप किसी बैटल को जीतते हैं तो औरतों और बच्चों को जो है वो फिर कैप्चर किया जाता था, जमीन को कैप्चर किया जाता था, और फिर आप उसमें एडवांस करते थे। गर्ज़े के गुज़श्ता तमाम जंगों में तुम्हारे नामवरों ने उनको बड़ा नुकसान पहुंचाया है, और अब तुम्हारे सामने उनका ये बहुत बड़ा लश्कर जमा होकर आ गया है। इस तरह से हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु उन्होंने मजीद कुछ और बातें भी मुसलमान लश्कर के सामने की, और फिर शहनशाह ईरान यज़दगर्द उसके पास अपना एक मैसेंजर भेजा, ठीक है। अच्छा, जो ईरान का बादशाह था, यहाँ पे हम क्लास खत्म करते हैं, वैसे भी आप लोगों की बस हो गई है, ठीक है, ये मुझे अच्छी तरह से पता है, ठीक है, हम यही चाह रहे थे कि बस बस होना बस हो जाए, ठीक है, बहुत बस हो गई, तो क्या कहते हैं, ईरान का मामला किसी को याद है कि नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी में ईरान का क्या मामला हुआ था? एनीवन फ्रॉम द सीरा? जी,
जंगे
जंगे मूता में तो नहीं, ईरान का एक जिक्र बहुत ज्यादा एक आता है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपसे बाद में पूछना, आप कह रहे हैं?
मूता
हाँ, खत वाला मां, क्या हुआ था उसके अंदर?
का नाम लिखा हुआ था सबसे ऊपर पे ईरान के बात करें हम दूसरे नहीं पढ़े तो खा गया
ठीक है, 6 हिजरी, जब हिजरत के बाद 6ठा साल था ना, तो उसमें नबी अलैहिस्सलाम ने फिर खतूत लिखे थे बादशाहों के नाम, ठीक है, तो शाह ईरान के नाम भी खत लिखा, और जो है वो इस तरफ भी भेजा, यमन की तरफ भी, और बहरेन की तरफ भी, और मिस्र की तरफ भी, और रोम की तरफ भी, ठीक है। तो जो फारस के बादशाह के पास खत लेकर के गए, तो फारस के बादशाह ने कहा, अच्छा भी पढ़ के सुनाओ, तो वो ट्रांसलेटर, इसमें उन लोगों की तो जुबान अरबी नहीं थी, नबी अलैहिस्सलाम का तो अरबी में था, तो ट्रांसलेटर फिर जो है वो बताता था, तो उसने पढ़ा ना कि इसमें तो सबसे ऊपर जो है वो मिन मुहम्मदिन रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, राइट, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये खत है। उसको तो उधर ही गुस्सा आ गया ना, कि ये कौन सा तुमने तरीका निकाला है, मैं बादशाह हूं, मुझे जब मुखातिब कर रहे हो तो नाम तो मेरा सबसे ऊपर होना चाहिए, मैं सबसे बड़ा हूं, और वो अपने आप को बादशाह नहीं समझते, अपना तो खुदा समझते थे वो लोग। तो उसने जो है ना, वो बात क्या सुननी थी, उसने तो खत लिया और फाड़ ही दिया नबी अलैहिस्सलाम का खत, ठीक है, और फिर उनके हवाले करके वापस। तो वो जब सहाबी वापस आए, बताया कि ये किया उसने, तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कि अल्लाह ताला उसके सल्तनत के टुकड़े टुकड़े कर देगा, ठीक है। तो उसकी इब्तिदा फिर कैसे हुई, कि उसको जो है ना, उसके अपने बेटे ने कत्ल कर दिया, ठीक है, और फिर उसका बेटा खुद भी जो है वो मर गया, वो कुछ मुझे अब एग्जैक्टली याद भी नहीं आ रहा, वो कुछ जहर वहर का सिलसिला था।
इसको पता था कि मेरा बेटा मुझे मार सकता है तो उसने एक
हाँ,
शीशी रखी हुई थी जहर अपने कमरे में तो उस लेबल लगाया हुआ था कि सेहत के लिए
हाँ, तो उसने कोई ऐसा रखा हुआ था, जहर था, लेकिन उसके ऊपर लेबल जो है वो दवा वगैरह का लगा हुआ था, तो बेटे ने उसको कत्ल कर दिया, और बेटे ने वो दवा वाली शीशी समझ करके उसको भी पी लिया, बेटा भी मर गया, ठीक है। तो अब इस तरह से कई जो थे ना, वो सक्सेसिव लोग जो है वो मरते गए, हत्ता के उसके प्रिंस फैमिली के अंदर कोई बचा ही नहीं, कोई मर्द बचा ही नहीं, एक लड़की बची, वो लड़की को कहा चलो यही है तो कम से कम इस फैमिली की ना, उसी को उन्होंने बादशाह बना दिया, यानी मलका बना दिया, ठीक है। तो वो मलका जो है वो फिर चल रही थी, इस वक्त जो है जब ये सादतान का लश्कर वहां पे आने वाला था ना, उस वक्त उन्होंने कहा कि यार बहुत हो गई, मलका साहब ने तो पहले बहुत बेड़ा गरक किया हुआ है हमारा, अब मजीद जो है ना वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, अब तो अरबों का लश्कर भी आ रहा है। उन्होंने मलका साहिबा को उतारा, ठीक है, और जो है ना वो एक लड़के को, यजदगर्द नाम था उसका, उसको जो है वो बादशाह बना दिया, कि भाई तुम ही हैंडल कर सकते हो ये फाइटिंग वाइटिंग, ये औरतों के बस की बात नहीं है। तो अब जो यजगर्द को बादशाह बनाया तो फिर जो है ना इनका मोरल जो है वो बहुत ज्यादा बूस्ट हुआ, और उन्होंने खूब जो है ना वो कस्में खाई, जो हम मुसलमानों से लड़ेंगे, हम उनको शिकस्त देंगे वगैरह। तो बड़ा दुश्मन भी एक तरह से बज़ाहिर स्ट्रांग हो गया, लेकिन ये वैसे ही था जैसे कि मरने से पहले एक आखिरी आप जोरदार सांस लेते हैं ना, लेकिन असल में आपने मरना होता है, वो आपकी आखिरी सांस होती है, ये उस तरह की उनकी एक आखिरी सांस थी। तो इस तरह से ये लोग जो है वो जंग के लिए भरपूर तैयार हो गए। बाकी इंशाल्लाह हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। वो आखिर दावाना अलहमदुल्ला रब्बिल आलमीन। कोई सवाल वगैरह तो नहीं किसी को?